और हमारे बीच में बहुत ही विशेष वक्ता उपस्थित हैं। हिज गेस्ट हायग्रीव प्रभु, हरि हरि भाव। हायग्रीव प्रभु हम सबके बहुत प्रिय, और पहले दिल्ली क्षेत्र में ही थे, पिछले कुछ वर्षों से मायापुर धाम में हैं और वहाँ बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं कर रहे हैं और वहाँ शास्त्रों का बहुत गहराई से अध्ययन। और प्रभु जी ने अब पिछले 25 वर्षों से इस कौन संस्था में सेवा कर रहे हैं, और मायापुर धाम में इन्होंने जितने भी पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाएं थी श्रीमद् भागवतम में, उसका उन्होंने संकलन किया हिंदी में, और साथ ही साथ में वहाँ पे वेस्ट बंगाल में और वहाँ के आदिवासी क्षेत्रों में काफ़ी वहाँ प्रचार कर रहे हैं। अभी प्रभु जी केन्या से आ रहे हैं, केन्या में काफ़ी समय बिताया, वहाँ पर प्रचार किया, और प्रभु जी विख्यात हैं अपने शास्त्रों के ज्ञान के लिए। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व, जन्माष्टमी के उत्सव पे प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबसे निवेदन है अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट या स्विच ऑफ करके प्रभु जी के मुखारविंद से दशम स्कंद के भागवतम पाठ का पूरा आनंद उठाएं।
हरे कृष्णा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 36 37 38 बोर्ड में 37 और 38 लिखा है, तो 37 और 38 दोहराइए। पहले मैं 36 नंबर श्लोक पढ़ लेता हूँ, फिर 37 और 38 साथ में दोहराएंगे। एवं वा तप्यतोस्ति ब्रह्म तपः परम दुष्करम् दिव्यवर्षा सहस्राणि द्वादशेयोर्मदात्मना। इस तरह तुम दोनों ने मेरी चेतना मैं कठिन तपस्या करते हुए 12,000 दिव्य वर्ष बिता दिए। 37 नंबर श्लोक दोहराइए। तदा बं परितुष्टो हम ममोना बपुसा नघे तपसा श्रद्धया नित्यम् भक्त्या च हृदि भाविता प्रादुर्रासं वरादारं युवयोर्कामदित्सया ब्रियतं वर इत्युक्ते मादृशो बंबृतः सुता। एक एक श्लोक दोहराइए। तदा वं परितुष्टः अमुना बपुसा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भाविताः प्रादुरासं वरदारं जुवयोर्कामदित्सया व्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वावृतः सुता तदा वां परितुष्टोऽहं ममूना बपुसा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भाविता। एक 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 श्लोक दूसरा कोई बोली। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ तदा तब 12,000 साल बीतने पर मतलब दिव्य वर्ष साधारण वर्ष में वाम तुम दोनों के साथ परितुष्ट अहम मैं संतुष्ट हुआ अमुना इससे बपुसा कृष्ण के रूप में अनघे हे निष्पाप माता तपसा तपस्या के द्वारा श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक नित्यं निरंतर लगे रहकर भक्त्या भक्ति के द्वारा च भी हृदि हृदय के भीतर भाविता स्थिर करके वा संकल्प के साथ प्रादुरासम तुम्हारे समक्ष उसी प्रकार प्रकट हुआ वरदारट श्रेष्ठ वरदायक युवयो तुम दोनों का कामदित्सया इच्छा पूरी करने के लिए ब्रियता तुमसे मन की बात कहने के लिए पूछा बरहा वरदान के लिए इति उक्ते इस तरह अनुरोध किया जाने पर मादृशा मेरी ही तरह बाम तुम दोनों का वृतः पूछा गया था सुतः तुम्हारे पुत्र के रूप में तुमने मेरे जैसा पुत्र चाहा था। ये बात कौन बोल रहे हैं? हाँ, किसको बोल रहे हैं? हाँ, देवकी और वसुदेव दोनों को एड्रेस कर रहे हैं। और किस विषय में कह रहे हैं? किस विषय में कह रहे हैं? उनकी पूर्व जन्म के विषय में क्यों कह रहे हैं? हाँ? पुत्र रूप ने क्यों ये बात कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? नहीं, क्या बात थी? गुड, क्योंकि माता पिता दोनों भयभीत थे, क्योंकि कंस ने उनके और 6 पुत्रों को ऐसे मार दिए थे, तो अभी फिर उनका तो ऐसे नहीं होगा, इसलिए भयभीत थे। लेकिन भगवान ने उनको पूर्व जन्म की बात कह करके उनके भय को दूर किए और कन्विंस भी कर रहे हैं कि तुमने बड़े तपस्या किए थे मुझे प्राप्त करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आया। करेक्ट, ओके। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, हे निष्पाप माता देवकी, उस 12,000 दिव्य वर्ष के बीत जाने पर जिनमें तुम अपने हृदय में परम श्रद्धा भक्ति तथा तपस्या पूर्वक निरंतर मेरे ध्यान करते रही, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ था, क्योंकि मैं बर दिन में सर्वश्रेष्ठ हूं। अतः मैं इसी कृष्ण रूप में प्रकट हुआ कि तुम मनवांछित बर मांगो। तब तुमने मेरी सदृश पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी। धन्यवाद। तात्पर्य, जो लोग स्वर्ग लोक में रहते हैं उनके लिए 12,000 दिव्य वर्ष दीर्घ काल नहीं है, भले ही इस लोक के रहने वालों के लिए ये सुदीर्घ अंतराल लगे। सुतपा ब्रह्मा के पुत्र था, सुतपा ब्रह्मा की पुत्र हैं, कोई ऐसे गलती से नहीं समझना चाहिए। सुतपा कौन है? पुरुष स्त्री हैं, क्योंकि आकार है, स्त्रीलिंग नहीं। सुतपा मतलब जो बहुत अच्छी तरह से तपस्या किए हैं, वो ब्रह्मा के पुत्र हैं, जिनकी तपस्या के बारे में दूसरे स्कंद में वर्णन है। दूसरे स्कंद की 6 अध्याय में है उनका थोड़ा डिसेंडेंस, सुतपा कौन थे, ब्रह्मा जी से किस प्रकार वर प्राप्त किए। भगवद गीता में 8:17 में ज्ञात है कि ब्रह्मा का एक दिन हमारी गणना के लाखों वर्ष के तुल्य होता है। सहस्र युग पर्यन्तम् अहर्जत ब्रह्मण विदो, हमें ध्यान रखना होगा कि कृष्ण जैसा पुत्र पाने के लिए कितनी महान तपस्या करनी होती है। यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे बीच इस भौतिक जगत में प्रकट हो, तो इसके लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता होगी। किंतु यदि हम कृष्ण के पास आपस जाना चाहें, तक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, तो हमें केवल कृष्ण को समझना तथा उनसे प्रेम करना होगा। प्रेम के द्वारा ही हम भगवत धाम आपस जा सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है, प्रेमा पुमार्थ महान, भगवत प्रेम किसके लिए भी सर्वोच्च उपलब्धि है। जैसा कि बतलाया जा चुका है, भगवान की पूजा की 3 अवस्थाएं होती हैं, ज्ञान, ज्ञानमयी तथा रति। सुतपा तथा उनकी पत्नी प्रश्नि ने ज्ञान के आधार पर भक्ति कार्य का शुभारंभ किया था। धीरे धीरे उनमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, और जब वह प्रेम प्रौढ़ प्रगाढ़ हो चुका तो भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुए। यद्यपि देवकी ने तब उनसे कृष्ण रूप धारण करने की प्रार्थना की थी। भगवान से अधिक प्रेम करने के लिए हमें कृष्ण या राम रूप में भगवान की कामना करनी चाहिए। हम कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान विशेष रूप से कर सकते हैं। इस युग में हम तभी अधम हैं, सभी अधम हैं, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम पर कठिन भगवत प्रेम की वर्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु के संगी समझते थे। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विसे नमः। इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु की महाबदान्य अर्थात सर्वाधिक दयानी व्यक्ति कहा गया है, क्योंकि वो इतनी आसानी से कृष्ण का दान देते कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य कृष्ण प्राप्ति कर सकता है। अतएव हमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त वर का लाभ उठाना चाहिए, और जब हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से हम सारे मल से शुद्ध हो जाएं, चेत दर्पण मार्जनम, तो हम बड़ी आसानी से समझ सकेंगे कि कृष्ण ही एकमात्र प्रेम का लक्ष्य है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। अतः मनुष्य को हजार वर्ष तक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसे कृष्ण से प्रेम करना सीखना होता है और उन्हीं की सेवा में सदा लगे रहना होता है। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं मेव स्मृत्यद। तभी मनुष्य सरलता से भगवत धाम आपस जा सकता है। यदि पुत्र रूप में या अन्य रूप में किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए अपने भौतिक कार्य है तो भगवान को यहाँ न बुलाकर हम स्वयं भगवत धाम आपस चले जाते हैं तो भगवान के साथ हमारा असली संबंध प्रकट हो जाएगा और हम शाश्वत संबंध बनाए रख सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करके हम धीरे धीरे परम पुरुष के साथ शाश्वत संबंध स्थापित कर लेते हैं और हमें स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हमें चाहिए कि इस वर का लाभ उठाकर भगवत धाम आपस जाएं। इसलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, पतित पावन हेतु तब अवतार। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हम जैसे पतितात्माओं का उद्धार करने और भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ। हमें भगवान की इस महान वर का लाभ उठाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। ओं अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीजुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं नित्यं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखानितंस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जंस्वानुभावाखिलश्रुतिसारैकम् अध्यात्मदीपतितीर्षतां तमन्धम् संसारिणा करुणाह पुराणगुह्यं तं व्याससूनं उपयामि गुरु मुनीनं। जत्कीर्तनं जत्स्मरणं जदरहणं जदवन्दनं जत्श्रवणं जदीक्षणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मष तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। भूतैर्महद्भिजयिमा पुरो विभो निर्मायसे ते जदमु सपुरुष। भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् स्वलंकृशिष्टम् भगवान् वचंसि मे। हरे कृष्णा। तो आज मेरी बड़ी सौभाग्य है कि आप लोग ने ये भगवान की पवित्र कथा को प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिए। विशेष करके पूज्य रघुवंश कृष्ण प्रभु का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत उत्साहित करते हैं। तो भक्तों की संग में रह करके ये आपस में जो उत्साह का आदान प्रदान है, ये भक्ति जीवन को दृढ़ करता है। ऐसे नहीं कि हम नित्य भागवतम सेवया भक्ति रिभवती नष्टि की। जय श्री श्री राधा राधिका रमण जीव की, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय श्री श्री कृष्ण बलराम जीव की, जय। तो ये श्रीमद् भागवतम जो संकलन किए कि भक्त का अंदर भक्ति भाव को दृढ़ और निष्ठा बनाने के लिए। परंतु क्या है भागवत में प्रसंग? भक्त और भगवान के बीच में प्रेम के आदान प्रदान है। वही कला जब हम सीख लेंगे तो हम भगवत धाम जाने के योग्य व्यक्ति बन जाएंगे। अगर ये कला हम भक्ति के अभ्यास के साथ नहीं सीख पाते हैं कि कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, तो हमारी हृदय में शुष्क ज्ञान केवल दंभ अहंकार आदि उत्पन्न करेगा और आसुरिक जीवन के लिए पथ प्रदर्शन करेगा। इसलिए ये श्रीमद् भागवतम प्रतिदिन यदि हम श्रवण करते हैं, किस प्रकार? श्रद्धा के साथ, सुनताम श्रद्धया नीतम। तो श्रद्धा की कुंजी है कि उस कथा के प्रति इतनी आकर्षण उत्पन्न होना चाहिए और भक्तों के प्रति इतनी श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि भागवतम कथा ही भक्त और भगवान के बीच में है। तो दोनों के प्रति साइमल्टेनियसली हमको श्रद्धा और क्या उत्पन्न करना चाहिए? प्रेम। तो इसी प्रकार हम भी प्रचेष्टा करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि इस बातें को फिर दोहराने के लिए सोचेष्टितम श्रुणतम श्रद्धया नीतम गुणंतस्य सुचेष्टितम। तो इसी प्रकार अभ्यास से तो भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं, भगवान बिसते हृदय। तो आज हम देखते हैं कि भगवान कैसे वसुदेव के हृदय में प्रवेश किए। आप जानते हैं ना भगवान कहाँ प्रकट हुए? वसुदेव के हृदय में। भगवान वास्तव के शब्द को खाली नहीं कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष वो करके भी सिखाते हैं किस प्रकार भक्त हैं कि उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। हालांकि कंस ने वसुदेव को और देवकी माता को उन्होंने अलग अलग बंदी बनाए था। जब उनको पता चला कि मेरी काल अभी प्रकट होने वाले हैं, ये जीव गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद इस बात को स्पष्ट की, तो उन्होंने उस कारागार में एक कनर में वसुदेव को एकदम क्या किए, कड़िया और बेड़िया में बांध दिए और देवकी माता को एक कनर में पहले तो नजरबंदी करके रखी थी, रखा था। परंतु जब आठवीं गर्भ उनको पता चला कि अभी सातवीं गर्भ नष्ट हो गया और लोक ने बहुत उनकी निंदा की कि कितनी ये पतित हैं, गर्भ में बच्चे को मार दिया, क्या टोना करके बाईसे गुनी करके सब मार दिया। लेकिन कंस इतनी कन्विंस्ड था, निश्चित था कि ये आठवीं गर्भ मुझे मारेगा, इसलिए प्रतिकूल भाव से भगवान को स्मरण कर रहा था। लेकिन भगवान कुछ स्थान काल के प्राबंध में बंधे नहीं है, क्योंकि भगवान स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं। और भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान कहते अजो प्रकृति सोमधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, मेरी शक्ति से मैं स्वयं प्रकट होता हूं, किसी मां बाप का शक्ति लेके नहीं। इसलिए भगवान काल कर्म और गुण के द्वारा बंधे नहीं है, वो निर्गुण है। परंतु उनके दिव्य गुण को चर्चा करने से वो निर्गुण अवस्था को प्राप्त होता है। भगवान अजन्मा है परंतु उनकी जन्म की बातें सुनने से हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। और भगवान कालजयी हैं परंतु समय के अनुसार के द्वापर की अंत में भगवान लीला करते हैं, उस काल की प्रबंधी और किस काल में भगवान जन्म लेते हैं अभी उस समय उनका जन्म दिवस हम मना रहे हैं। तो इसी प्रकार उनकी जन्म की कथा, उनकी कर्म की कथा और उनकी सौंदर्य, इसे बातें को हम सुनने पर ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त होता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति, भगवान कहते हैं मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो अभी ये जो प्रसंग चल रहा है कि देवकी वसुदेव बहुत भयभीत हो चुके थे तो भगवान उनको सांत्वना देते हुए कहे कि आप भूल गए हैं, जैसे अर्जुन को कहे कि तुम्हारा और मेरे बहु जन्म बीत चुका है, बहुनी में व्यतीतानी, और भगवान ये संबंध बता रहे हैं केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके संबंध। गीता के ज्ञान केवल अर्जुन माध्यम बना पार्थ बत्सा, लेकिन पीने वाला कौन है, सुधीर भोक्ता, जो सुंदर बुद्धि वाले हैं सुनने वाले हैं वो दूध को पी सकते हैं। तो उसी प्रकार ये जो संबंध के जो ज्ञान है भगवान स्मरण दिलाते हैं कि हमारे किस प्रकार नित्य संबंध है भगवान के साथ, हम सनातन अंश नहीं है, सनातन संबंधी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, अपक्का रिश्तेदार हैं, सर्वदंग सर्वभूतानम, मैं ही सबकी हितेशी हूं और मैं सबके हृदय में निवास कर रहा हूं बहुत नजदीक। तो ये बात को स्मरण दिलाने के लिए जैसे अर्जुन को स्मरण दिलाए उसी प्रकार देवकी और वसुदेव को भी स्मरण दिला रहे हैं कि आप पूर्व जन्म में मुझे प्राप्त करने के लिए कितनी कड़ी तपस्या किए थे, कितने वर्ष तक किए थे, 12,000 दिव्य वर्ष सहस्राणी द्वादशे, और हमारे यहां एक साल देवताओं की एक दिन होता है तो इसी हिसाब से वो लगाओ 36,000 वर्ष जो है वो देवताओं की कितना होता है, 100 साल है ना, तो 360 दिन उनका कितना होगा, एक दिन है ना, तो 36,600 साल जो है उनका एक वर्ष नहीं, तो 36,000 वर्ष जो है उतने दिन तक तपस्या की। तो हम लोग जीते हैं कितने साल तक, 1,000 साल भी नहीं, 100 साल भी नहीं जी पाते हैं, परंतु तपस्या करना चाहिए क्योंकि तपस्या ही जीवन जीने का आधार है। अगर कोई व्यक्ति तपस्या नहीं कर रहा है वो मरा हुआ है, वो जी नहीं रहा, क्योंकि जिसके अंदर दिव्यता नहीं है वो क्या है, कलमस्ता है, और कलमस व्यक्ति मरा हुआ है क्योंकि शरीर जड़ है, वो कलमस से भरा हुआ है तो मरा हुआ व्यक्ति है। तो इसलिए ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश दिए हैं, तपोह दिव्य पुत्र कह जेना शुद्धेत सत्तम, सत्य को शुद्धि करने के लिए तपस्या करना चाहिए और इससे ही हम ब्रह्म सुख को आस्वादन कर सकते हैं। जस्मात ब्रह्म सुखम तो अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख को प्राप्त करते हैं। और तपस्या शब्द का अर्थ प्रभुपाद ने क्या व्याख्या किए हैं, क्या वॉलंटरली एक्सेप्ट, इनकन्वीनियंट ट्रबल्सम, ओके, तो कठिनाई को अपने आप स्वतः इसको स्वीकार करना चाहिए, किसके लिए, भगवान के लिए, मतलब भगवान को तपस्या करना पड़ेगा, बाधा भगवान, भगवान को खुश करने के लिए, क्योंकि भगवान तपस्या के द्वारा प्रसन्न होते हैं। परंतु गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तपस्या के द्वारा भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ना हं बेदरी न तपसा न दाने न चच्चया सक्यं एवं विधं दृष्टो दृष्टवान सीमं जथा। परंतु आपकी और मेरे बीच में जैसे साक्ष्य संबंध है ना, वही साक्ष्य संबंध आपको योग्य बनाएगा। किसी को भी योग्य बना सकता है भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान के सुंदर श्याम सुंदर रूप को दर्शन करने के लिए वही संबंध। और जिसकी ये संबंध नहीं है उसके जीवन बेकार है। से संबंध नहीं जरा वृथा जन्म गेला तारा विद्या कुल की करिते पारे। तो ये सब पढ़ा लिखा ये सब कुछ काम के ही नहीं, यहां तक शास्त्र अध्ययन भी। तो तपस्या करके क्या करना चाहिए, अपने प्रेम को डेवलप करना चाहिए। नहीं तो तपस्या भी तमोगुणी भी होता है, तपस्या रजोगुणी भी होता है, तपस्या सतोगुणी होता है। लेकिन निर्गुण तपस्या क्या है, पहले हम तमोगुणी तपस्या के बारे में चर्चा करेंगे। अशास्त्रम विहितम घोरम तप्यन्ते जे तपोजनः दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलन्निता। दम्भ अहंकार, दम्भ का मतलब जानते हैं, जो नहीं है उसको दिखावा करना, आए मैं बहुत बड़ा अफिसर हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत बड़ा मानी हूं। अहंकार का मतलब क्या है, मैं अहम, उसी प्रकार मुझे रेस्पेक्ट देना चाहिए, रेस्पेक्ट फॉर रेस्पेक्ट। और ये भावना क्या है, कौन सी भावना है, आसुरिक भावना है। दम्भ दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुष्य एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। ये असुर संपत्ति को हम बैंक बैलेंस बनाते हैं, ये फिर काला धन बन जाएगा, काम में नहीं आएगा, जलाना पड़ेगा नहीं तो फेंकना पड़ेगा, कोई काम नहीं आने वाला। तो ये आसुरी धन को हम सुरक्षित करके रखते हैं, इसलिए हमारे शरीर को श्मशान में जला जाता है, क्योंकि वो धन हमारे कोई काम का नहीं है। तो और व्यक्ति शरीर को बहुत कष्ट तो देता है, कर्षयंतम शरीरस्तम भूत ग्राम अचेतसा, और उससे भगवान को भी पीड़ा पहुंचता है, जैसे हिरण्यकश्यपु आदि। तो बहुत तपस्या की लेकिन क्या उससे भगवान खुश हुए, हालांकि तपस्या के फल निष्फल नहीं होता है, कुछ ना कुछ फल तो मिलता है, ब्रह्मा जी ने उनको दिए बर दिए और उन्होंने अजर अमर बनने के लिए बहुत प्रयत्न किया था कि मैं मरूंगा नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले भाई मैं भी स्वयं अमर नहीं हूं, आपको कैसे इस अमरत्व की वर प्रदान कर सकता हूं। परंतु वो इतनी चालाक था, उन्होंने सभी वर ऐसे मांगा तो उनको लगा हाँ ये है अमरत्व प्राप्त करने के साधन है। परंतु भगवान उससे भी और चालाक है, बुद्धि बुद्धिमता मस्मि, बुद्धिमान का बुद्धि मैं ही हूं, और छल छल यता मस्मि, कपटी व्यक्ति में सर्वाधिक कपटी हूं, छल करने वाले। तो भगवान से कौन छल कर सकता है, भगवान कोई विपन्न नहीं लिए, नाखून से ही काम तमाम कर लिए, मानना था ना। परंतु दिव्य तपस्या का भी विभाजन है, वो शारीरिक रूप से वाणी के रूप में और मन के रूप में, क्योंकि तीनों चीज कार्य करता है, शरीर भी कार्य करता है लेकिन डायरेक्शन कहां से प्राप्त करता है, अपने मन और बुद्धि से। तो इसलिए शारीरिक तपस्या को पहला आधार बनाने की पहले हम लोग मानसिक तपस्या करना चाहिए, वाणी की तपस्या करना चाहिए। इसलिए क्रम दिए हैं भगवान कि शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, और इस इक्विपमेंट को हम कार्य में लगाने के लिए मैनुअल बुक को रखना चाहिए, है ना। तो ये है भगवान कह रहे कि देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचमार्ज्य ब्रह्म ब्रह्मचर्य हिंसांग च शारीरंग तप उच्यते। इसके सात विभाग है शारीरिक तपस्या का, देव देवता भगवान, द्विज ब्राह्मण गुरु आध्यात्मिक गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, देव द्विज गुरु प्राज्ञा, प्राज्ञा मतलब विद्वान शास्त्रज्ञ, पूजनम उनकी पूजा करना चाहिए, फर्स्ट ये चार लोगों को पूजन, अगर इनकी पूजा करते हैं तो क्या होगा, शरीर पवित्र होता है, शरीर के जो कलमश हैं, ये शरीर किससे बना हुआ है, तमगुण से, शरीर अविद्या जाल, अविद्या तमगुण से आता है, तो अगर इनको सम्मान देते हैं बा पूजा करते हैं सम्मान, तो शरीर पवित्र होता है। और व्यक्ति घमंड को भी दूर कर सकता है, किसको सम्मान देने से अपना अहंकार नीचे जाता है। इसलिए भगवान इस पूजन की बात क्या कह रहे हैं, शौचम आर्जवम, आर्जव मतलब सरलता, शौच मतलब शुद्धि भी होता है, और स्नान करना चाहिए, शरीर को इतने गंदा नहीं रखना चाहिए, कम से कम दो बार स्नान करना चाहिए। ब्रह्मचर्य अहिंसांग च शारीरंग तप उच्यते, अत्यधिक कामुक जीवन नहीं बिताना चाहिए, और हिंसा प्रकृति, हिंसा भी है परद्वेष, जैसे प्रभु रामचंद्र की चरित्र के बारे में क्या कहा जाता है, सपने में न देखें परदोषा, कह रही महात्मा जी हम भी सपने में नहीं देखते दोष किसकी। अरे इसका मतलब नहीं है कि सपने में नहीं देख रहे हैं, कहते चेतना में देखना चाहिए, कहते चेतना में तो आता है लेकिन स्वप्न में, रूप गोस्वामी बात कर रहे हैं कि हम कभी स्वप्न में भी पर स्त्री की बारे में नहीं सोचते। दुष्यंत तो महाराज जंगल में गए थे, शकुंतला को देखकर ही कह रहे, अरे कभी हमारे गुरुवंशी का मन में भी कभी इस प्रकार पर स्त्रियों को देखकर की कुभावना नहीं होती है, आज कैसे आ गया, मन कैसे कुपंथ में गया। और अपने भाई के साथ भगवान रामचंद्र फूल तोड़ने के लिए गए थे जनक जी की बाग में, बगीचा में, तो वहां सीता जी को देखकर कि अपने भाई से कह रहे हैं, लक्ष्मण छोटे भाई से, अरे लक्ष्मण ये कैसे हैं, क्योंकि मैं अपने मन को अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं लेकिन दूसरी स्त्रियों के प्रति मेरे आंख कैसे चल जाता है नजर, ये कौन है। लेकिन वहां एक परीक्षा है, कि यदि किसकी भावना पवित्र है, अपने पवित्र भावना को पढ़ पाता है, जैसे मिरर स्वच्छ है तो अपना चेहरा को आप देख सकते हैं, मिरर गंदा है तो अपना चेहरा को नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। तो ऐसे स्वच्छ व्यक्तियों के मन में ये स्वच्छ भावना उत्पन्न होती है। तो इसलिए शारीरिक तपस्या करने पर वो मन के ऊपर भी प्रभाव डालता है। फिर रही कौन सी तपस्या, वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या क्या है, अनुद्वेगं करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च जत् स्वध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। स्वध्याय शास्त्र पढ़ना चाहिए, और किसी भी बातें बोलना है तो शास्त्र के आधार पर ही बोलना चाहिए, ऐसा मनमानी बात नहीं करना चाहिए। किसको भी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, किसकी भक्तों को गाइड कर रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, अपने मनमानी बातें नहीं बोलना चाहिए, उसको शास्त्र की शब्द को, शास्त्र के उपदेश को सरलता से समझाना चाहिए। और वाणी भी ऐसा ना हो कि दूसरे के मन में क्रोध उत्पन्न करे, उद्वेग उत्पन्न करे। यह भी सत्पुरुष की एक स्वभाव है, किसके मन में कष्ट नहीं देते हैं, दूसरे की बुराई नहीं देखते हैं। इसलिए सत्यम प्रियम। परंतु प्रभुपाद लिखे हैं कि गुरु को शिष्य का दोष देखना चाहिए, उसको डांटना चाहिए, उसको सुधार करने के लिए, पिता माता को अपने बच्चों को, क्योंकि वो आश्रित हैं, उनको सुधारना उनकी कर्तव्य है। गलती करना सबकी स्वभाव है, प्रकृति है, लेकिन प्रगति होता है जब व्यक्ति रेक्टिफाई कर पाए। लेकिन उसको रेक्टिफाई कौन कराता है? गुरुजन कराते हैं, लेकिन सबको यह अधिकार नहीं है। इसलिए अपने प्रकृति को जो सुधार लेता है उसकी प्रगति होता है, उसको परफेक्शन मिलता है। जीवन में कोई भी कुछ हम गलती किए, उसको दंभ अहंकार, मैं उसको नहीं करने, मैं सही किया हूं, विचार करो, स्वच्छ दर्पण में चेहरा को देखना चाहिए। उसी प्रकार अपने गलतियों को पढ़ना चाहिए अंदर से, शास्त्र के मिरर लेकर। नहीं तो असुर लोग कभी भी रेक्टिफाई नहीं करते हैं अपने दोस्त को। अनुद्वेगं करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च जत। अगर किसके हित करना चाहते हैं तो ऐसे शब्द बोलो। जैसे गुरु महाराज कभी कभी बातें बोलते हैं, आप तो बुरा नहीं मानोगे ना मैं एक बात बोलूं। ये के कहना के शैली है, अच्छा है, क्योंकि कलयुग में शिष्य तो नहीं समझ रहे, तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं, इसलिए बुरा तो नहीं मानोगे ना मैं बातें बोल। तो इसे संतों के स्वभाव अपने शिष्यों को सुधारने के लिए इस प्रकार वाक्य के प्रयोग करते हैं। ये वाणी की एक तपस्या है। सत्यम प्रियम हितम चजत स्वाध्याय अभ्यास रंग चैव बांग बांग तप उच्चते। लेकिन सबसे बड़ी तपस्या है ये मन, क्योंकि मन बहुत चंचल और हटिला है, बड़ा शैतान है, इसको बस में रखना बहुत कठिन है, और यही बार बार संसार को लेके आता है और संसार की यातनाएं हमको भुगाता है, और नरक की कष्ट भी, नरक की सजा यही मन ही प्रदान करता है। इसलिए मन को शत्रु बना के मत रखिए। मन ही मनुष्याणं कारणं बंध मुख्यया बंधाय विषय संजोगम मुक्त निर्विषय मन। मन के साथ दोस्ती मत करो, लेकिन हम बहुत मित्र मान लेते मन को। इसलिए मन की तपस्या इस प्रकार करना चाहिए ताकि ठीक समझता रह करके हम प्रगति कर सकते हैं, अपने प्रकृति को सुधार सकते हैं। यह है मन प्रसाद सौम्यतम मौनात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर तपमान समुच्यते। मानसिक तपस्या का मूल वृत्ति है भाव को शुद्धि करना। कितनी अच्छी भाव थी देवकी और वसुदेव का, आप देखिए, भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए याचना किए, और जानते थे कि भगवान ही इस इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं, और भगवान कह रहे हैं कि आप लोग को पता चल गया था, क्योंकि इतनी कड़ी तपस्या किए थे, सूखा पत्ता और हवा ये था उनकी भोजन, ध्रुव महाराज जैसे, कर्दम मुनि जैसे, आप जानते हैं कि कितनी कड़ी तपस्या किए, परंतु किसके लिए? भगवान को संतुष्टि करने के लिए। तो कहते हैं कि आप अपने शरीर को इतनी कष्ट दिए, बपुसा अनग है, हे निष्पाप, आप पूरी तरह से पाप से मुक्त हो गए थे, और तपसा श्रद्धया नित्यम भक्ति हृदय च भाविता, इतनी कड़ी तपस्या किए, इतनी श्रद्धा के साथ आप तपस्या कर रहे थे, मेरी भावना से आप भावित हो गए। भक्तिया, भक्ति भावना ही भगवान की भावना है, और भक्ति की अनुकूलता। तो भरत भगवान कह रहे हैं बरदारं, मैं बरदान करने में सर्वश्रेष्ठ हूं, इसलिए आपकी मन में काम इच्छा थी। कौन सी काम? वहां ये सांसारिक काम नहीं, आप दोनों की इच्छा थी। ब्रह्मा जी से आदेश प्राप्त किए थे कि आप जाकर के पुत्र उत्पन्न करो, लेकिन वो तुरंत पुत्र उत्पन्न नहीं किए हैं, कुकर सुकर जैसे कड़ी तपस्या करके। और ये तपस्या से भगवान कहते परितुष्ट अहम अमुना, आप दोनों की तपस्या से मैं इतनी प्रसन्न हो गया, और आप जब वर मांगना मैं कहा ठीक है। मादृशं सुता, मेरी समान पुत्र और कौन हो सकता है, मैं तो मेरी समान हूं। भगवान कहते मतः पर तरंग नान्यात किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइबः। भगवान कहते मेरी समान और ना मुझसे बढ़कर कोई है। न च समा अभ्याधिकस्य दृश्यते, इस संसार में कोई भगवान की बराबरी नहीं कर सकता है, अब भगवान से बड़ा होने का क्या बात। लेकिन प्रभुपाद कहते हाँ, भक्त कभी कभी स्वेच्छा से छोटे बन जाते हैं। किसके सामने? प्रेमी भक्तों के सामने। वो अर्पण कर देते क्योंकि भक्त समर्पण कर देता है और भगवान भी भक्तों के पास समर्पण कर देते हैं। परस्परम भावयन्ता, भगवान कह रहे इस प्रकार परस्पर के भाव, राधारानी और कृष्ण के बीच में भाव, माता जसोदा और कृष्ण के बीच में होड़ लगता है, कृष्ण भागते हैं माँ भी भागती है, दौड़ती उनको पकड़ती है। वो कंपटीशन में भगवान हार जाते हैं। ऐसे इस उपनिषद में है ना, क्या है, तन्ने जाति तद्दे जाति तदुरे तदंति के, हाँ? भगवान मन से भी द्रुत गति में जा सकते हैं। मन से भी द्रुत गति, आप सोचिए मन कितना वेगवान है, परंतु भगवान मन से भी और जोर दौड़ सकते हैं, परंतु भक्त के सामने हार गए, पकड़ में आ गए। भगवान सबको मुक्त करते हैं, लेकिन प्रेमी भक्त के सामने वो स्वयं बद्ध हो जाते हैं, रस्सी में बन जाते हैं, गुण में बन जाते हैं। गुण का मतलब रस्सी। भगवान कह रहे इतनी प्रेम है, उस प्रेम में इतना मैं परितुष्ट हो गया, और वो आपको देने के लिए मैं तीन बार आया, तीन बार, एक बार पुत्र नहीं। पहले पृष्णि गर्भ, उनके माँ को कह रहे कि आप मुझे धारण किए गर्भ में, पृष्णि गर्भ आपका नाम पड़ा, उस समय मेरे अवतार का नाम हुआ पृष्णि गर्भ। फिर दूसरी बार कश्यप और दीति के रूप में आए भगवान, वामन देव के रूप में प्रकट हुए। माँ बाप को कितना श्रेष्ठ देते, कहते देखो मैं तो छोटे आपकी बच्चा हूं, मैं क्या ज्ञान। लेकिन भगवान कहते कहते बोल देते हैं भाई आपका पूर्व जन्म ये था। ऐसे माँ बाप को कोई सिखाता है ना, कहता अरे तू बच्चा होकर मुझे सिखाते हो, नाराज हो जाते। लेकिन भगवान इतनी सरल तरीके से सिखा रहे हैं, माँ बाप को ज्ञान दे रहे हैं। किसको दिए? कपिल मुनि किसको दिए? माता देवहूती को ज्ञान दिए। अभी पिता माता दोनों को दे रहे हैं ज्ञान, लेकिन कभी कभी मर्यादा पालन करते हुए युधिष्ठिर महाराज को नहीं बोलते, परंतु सीक्रेटली बोलते हैं अर्जुन को, क्या है शिष्यस्ते हैं, आप शिष्य बन गए ना इसलिए मैं ज्ञान दिया, नहीं तो पहले तो नहीं बोलता था आपको। कलयुग मास्मा गमो पार्थ, ये सब तो नहीं बोलता, आप मुझे कहे कि मैं शिष्यस्ते हूं साधि मांगता हूं प्रपन्न, इसलिए मैं बोल रहा। तो भगवान अपने माता और पिता दोनों को ये उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं आप ये नहीं बोलना चाहिए, आप और मेरी बहुत नित्य संबंध है, जिगरी दोस्ती है, अब भूलो मत, रो मत कि मैं तुमको छोड़ के जाऊंगा, पहले जन्म में आया हूं ना आपके पुत्र के रूप में, अभी भी रहूंगा, लेकिन थोड़े समय के लिए मुझे थोड़ा जाना है जमुना की दूसरी पार। सीक्रेट बोले वहां भी मेरा कोई माता पिता है, वो भी चाह कर रहे हैं मेरी लीला देखने के लिए। बात्सल्य के आदान प्रदान आप दोनों के साथ करूंगा, लेकिन जैसे भाव था उस भावग्रही जनार्दन जे जथा मांग प्रबदनते तांग तथे बचाम्य, उसी के अनुसार भगवान आदान प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान कहे कि आप मेरी समान पुत्र की याचना किए थे, इसलिए मैं सोचा तो मैं तो वर नहीं दे पाऊंगा, पूरा नहीं कर पाऊंगा, मेरे समान और कौन हो सकता है, इसलिए मैं स्वयं इस वर को देने के लिए तीन बार आया। आप इसको याद रखो। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए हैं यही प्रेम को प्रदान करने के लिए, प्रभुपाद तात्पर्य में कोट किए हैं, कहते बदान्य, ये बहुत बड़ा चीज थी। और पहले और दूसरे अवतार में, कृष्ण अवतार में, राम अवतार में, बामन अवतार में, नरसिंह अवतार में ये प्रेम नहीं दिए थे। अनर्पितम चरिम चिरात करुणया अवतिन्न कलो समर्पयितम उन्नत उज्ज्वल रसम सोभक्ति श्रियम। इतनी इलिवेटेड फ्रेम है और स्वयं भगवान ड्रामा करके सिखाए, आपने करीब भक्ति भाव अंगीकार चारी भक्ति दिया नचाई वो सबाकार। हम लोग उस भाव में भी नाच रहे हैं, कभी कभी भगवान को देख रही भाव उछलता है तो बहुत जोर डांस करते हैं, कभी कभी बच्चे की शैतानी से परेशान हो जाता है, माँ के भी भाव होता है क्रोध भाव, कभी मिर्ची भाव चढ़ जाता है, कभी चरणामृत भाव चढ़ता है, लेकिन भाव तो चढ़ता है, भाव के अनुसार सब नाचते हैं क्रिया करते हैं। परंतु महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं सबके अंदर ये भाव को चढ़ाऊंगा, चारी भक्ति दिया नचाई वो सवाकार, मैं सबको नचाऊंगा। इसलिए रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को देख करके पहचान गए, अरे आप तो वही कृष्ण हैं चलिया, उस समय तो अपना खोद लीला किए, माँ को सताए, अर्जुन के रथ चलाए, चोरी किए, सब नाटक कर लिए, अभी उस नाटक की भाव को कैसे प्राप्त करना है उसको शिक्षा देने के लिए वही कृष्ण आप आए हैं। इसलिए आप बड़ा दानी हो, जो ट्रेजर हाउस में रखे थे, जो बैंक में रखे थे, अभी खाता खोल करके सबको वितरण कर रहे हैं, जीरो बैलेंस में सबको दे रहे हैं, सबको भर दिए। तो इसलिए वो कहे कि नमा महा बदान्याय। तो महाप्रभु पूछ रहे हैं मैं क्या दे रहा हूं, कहते कृष्णा प्रेम। महाप्रभु कह रहे अरे कृष्णा प्रेम सिर्फ कृष्णा दे सकता है, कृष्णा बिना कृष्णा प्रेम दीते नहीं परे, यही है ना पद कृष्णदास का ब्याज कह रहे हैं कि कृष्ण के बिना कोई कृष्ण प्रेम नहीं दे सकते। तो कह रहे अच्छा आप गोरे शरीर धारण कर लिए इसलिए मैं पहचान नहीं पाऊंगा, आप स्वयं कृष्णा हैं, लेकिन अभी रूप को छिपा करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए, कृष्णा चैतन्य नाम ने, इसलिए कृष्णा बोल करके कह रहे आप अब चैतन्य रूप धारण किए और बड़ा कपटी हो आप, क्योंकि राधारानी के भाव को चोरी कर लिए और गोरा बन गए, गौरांगी हो गए, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं गौरांगा महाप्रभु, क्योंकि गौरांगी के भाव को ले लिए। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति से नमः, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहे। तो महाप्रभु की जो ये वरदान है ये सबसे ऊंचा है, ये मोक्ष से भी परे है। प्रेमा पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्राधार न पर। तो इसलिए प्रभुपाद गुरुकुल की बिल्डिंग में आप लोग देखे हैं वो श्लोक लिखे हैं जो गुरुकुल वृंदावन में बन रहा था, तो 74 में 75 में ओपनिंग हुआ, तो प्रभुपाद बोले ये श्लोक पहले लिखो, जो लोग वृंदावन एंट्रेंस करेंगे ये भाव को सीखना है। क्या भाव, कौन से श्लोक लिखे हैं, आराध्य भगवान ब्रजे सतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज बधू वर्गेण जाकल्पितम श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमापुमार्थमहान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरनोपरम्। उसे और कोई बड़ा चीज नहीं है। ये श्लोक कौन रचना किए हैं? कौन रचना किए? श्रीनाथ चक्रवर्ती। और प्रभुपाद बोले कि यही गुरुकुल के ऊपर लिख दीजिए, सब लोग पढ़ेंगे। आप लोग कोई देखे हैं ये श्लोक? हाँ, अभी गेट बंद कर दे इस तरफ, जैसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम को चढ़ते हैं, लाइब्रेरी बना है गुरुकुल का लाइब्रेरी लेफ्ट साइड में, उसके एंट्रेंस में। उस समय हम लोग प्रसाद लेते थे, उनको बोलते थे कि इस श्लोक को रटो तो हम लोग रटते थे प्रसाद के सामने रघुपति प्रभु थे वो कहते थे। तो वास्तविक बहुत बड़ी ऊंची भाव है, हम लोग को समझना चाहिए कि ब्रजवासी ने किस प्रकार भगवान की सेवा किए, भगवान से प्रेम किए और वे प्रेम से भगवान बांध गए। और यही प्रेम के लिए बहुत दिन से जीव भटक रहे हैं, और जब तक प्रेम प्राप्त नहीं करेगा तो ये संसार में भिखारी बनकर के रहेगा। प्रेम बिना क्या है? दरिद्र जीवन। क्या है? दास करी वेतन दिया मरे कृष्ण धन, है ना। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं कि ये प्रेम के बिना मेरे जीवन क्या है? भिखारी है। और महाप्रभु ये बहुत बड़ा गिफ्ट दिए, इसको पात्र में भरना चाहिए। लेकिन देखिए शेर की शेरनी की जो दूध है वो किस में, कौन से पात्र में रह सकता है? हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना। तो महाप्रभु तो सबको दिए, लेकिन क्या है? महाप्रभु कहते हैं सिंह, सिंह की दहाड़ से पाप भग जाता है, लेकिन जो सिंह ने शेरनी ने जो दिए हैं, जो दूध जो प्रेम, इसको स्वच्छ प्राप्त पात्र में रख सकते हैं, वो है ईर्ष्या और द्वेष। माँ को बताए महाप्रभु, मैं सबको ये प्रेम दे रहा हूं निसंकोच, लेकिन वैष्णव अपराधी को नहीं, है ना। आप अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध की, इसलिए जो प्रेम है महाप्रभु सुलभ में दे रहे हैं, श्रील प्रभुपाद इसको बांट रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद की शिक्षा और महाप्रभु की शिक्षा को यदि हम जीवन में पालन करें तो अनायास से प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। किसकी कोई प्रश्न है? यदि आप लोग प्रसन्न हो गए हैं तो प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो मैं धन्यवाद दे दूंगा।
हरे कृष्ण भाई जी, बहुत